हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। विधिक वहां से कुछ कदम चला ही था कि तभी एक गोली तेज गति से चलते हुए आई और विधिक के सीने के पास जाकर लगी। विधिक की बॉडी झटके से समुद्र में गिर गई थी और आंशी गोली की आवाज सुनकर जोर से चिल्लाई, ये गोली लावण्या ने चलाई थी। विधिक, विधिक, नहीं, ये नहीं हो सकता। आंशी वहीं दौड़कर विधिक के पास जाने लगी। समुद्र में उस वक्त लहरें काफी तेज गति से उठ रही थी, इसलिए अमन ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। आंशी को अमन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो उसे धकेलते हुए बोली, उसने मना किया था कि पुलिस को मत लेकर आना, तुमने नहीं मानी ना उसकी बात। वो सुधर चुका था, फिर भी मार दिया तुम लोगों ने उसे। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, मैं अपने बच्चे और तुम्हारी वजह से आई थी। तुमने विधिक को धोखा दिया, तुम जैसे लोग ही उसे सुधरने नहीं देते हो। आंशी अमन का हाथ छुड़ाकर वापस उस तरफ जाने लगी, लेकिन तब तक विधिक की बॉडी समुद्र की गहराई में कहीं खो चुकी थी। अमन ने दूसरी तरफ देखा तो लावण्या बाहर निकाल कर आई। अमन ने उस पर चिल्लाकर कहा, मैंने मना किया था तुम्हें मेरे साथ आने से, फिर तुमने ये क्यों किया? वो अंडरवर्ल्ड में बाकी लोगों को पकड़ने में हमारी हेल्प कर सकता था। वो सिर्फ और सिर्फ एक क्रिमिनल था, इसके अलावा उससे और कोई उम्मीद नहीं की जा सकती थी, लावण्या ने बिना किसी भाव के कहा। फिर उसने आंशी की तरफ देखा। आंशी इस वक्त इतने गुस्से में थी कि उसने लावण्या के गाल पर कस के थप्पड़ लगाया। वो उसे धकेलते हुए बोली, उससे बड़े क्रिमिनल तो तुम जैसे लोग हो, तुमने उसे मार दिया है, तुम भी एक क्रिमिनल हो। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था, फिर भी तुम लोगों ने उसे मार दिया। आंशी रोते हुए बेहोश हो गई थी। इस वक्त अमन को भी लावण्या पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो आंशी को उठाकर वहां से लेकर जाने लगा, जबकि लावण्या वहीं सकते में खड़ी थी। उसे लगा उसके इस काम से सब खुश होंगे, लेकिन यहाँ सब उल्टा ही हो रहा था। चंडीगढ़ लौटने के बाद एजेंसी ऑफिस में मीटिंग हो रही थी, जहाँ लावण्या के इस तरह विधिक पर गोली करने की वजह से सब दुखी थी। वो जिस तरह से आंशी को छोड़ने आया था, इससे वो समझ चुके थे कि विधिक अब सुधर चुका है। मिस्टर दत्त ने लावण्या की तरफ देखकर कहा, मैंने तुम्हारा ट्रांसफर दिल्ली में कर दिया है, जहाँ तुम अपनी फैमिली के साथ रह सकती हो। आई होप आगे से अपने एटीट्यूड को छोड़कर तुम काम पर ज्यादा फोकस करोगी तो ज्यादा सही रहेगा। मैंने अपनी गलती मान ली है सर, प्लीज ये मत कीजिए, लावण्या ने सिर झुकाकर कहा। वो वहां से नहीं जाना चाहती थी, लेकिन लावण्या ने जो भी किया था उसके बाद अमन ने उसे अपनी टीम में रखने से मना कर दिया था। लावण्या के साथ ये प्लान मिस्टर जिंदल का भी था, इसलिए मिस्टर दत्त ने मिस्टर जिंदल की तरफ देखकर कहा, मैंने आपको एक स्पेशल मिशन के लिए बुलाया था, वो अब पूरा हो चुका है तो आप अपने काम पर लौट सकते हैं, एजेंसी को अब आपकी जरूरत नहीं है। मिस्टर दत्त का फैसला कठोर जरूर था, लेकिन उन्होंने बिल्कुल ठीक फैसला लिया था। वो पहले से ही विधिक को मारने के खिलाफ थे। उनके फैसले के खिलाफ जाकर मिस्टर जिंदल और लावण्या ने जो भी किया था उसकी सजा उन्हें मिल चुकी थी। उनके जाने के बाद अमन ने एक लिफाफा मिस्टर दत्त की तरफ बढ़ाया। मिस्टर दत्त ने उसे खोलकर देखा और फिर अमन की तरफ देखकर हैरानी से बोले, मैंने उन दोनों को निकाल दिया है, फिर इसकी क्या जरूरत है? देखो, मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ, तुम मेरे एक काबिल एजेंट हो तो मैं तुम्हें इस तरह काम नहीं छोड़ने दूंगा। वो दो दिन से बेहोश है, नहीं पता कि कैसे उसने विधिक को यहाँ आने के लिए मनाया होगा, सिर्फ इसलिए कि वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। कुछ तो सहा होगा ना उसने, वरना विधिक जैसा बेदिल इंसान उसे यहाँ छोड़ने नहीं आता। वो मेरे काम के चलते इस दुनिया में नहीं रहा, तो जब तक मैं इसे छोड़ नहीं देता मैं उससे नजरें नहीं मिल पाऊंगा। उससे तो क्या, मैं यहाँ काम करूंगा तो खुद से भी नजरें नहीं मिल पाऊंगा। पहले मैं विधिक को मारता तो मुझे अफसोस नहीं होता, क्योंकि वो इसके लायक था, लेकिन जब वो सुधर चुका था तो हमें कोई हक नहीं था उसकी जान लेने का। लीगल तरीके से उसे सजा दिलाना चाहते थे तो दिला सकते थे, पर ये तरीका बहुत ज्यादा गलत था, अमन ने अफसोस भरे लहजे से कहा। आंशी अभी तक हॉस्पिटल में थी और विधिक के जाने के बाद से बेहोश थी। मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ, पर तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ, तुम्हें इस गिल्ड से बाहर निकलना होगा, मिस्टर दत्त ने कहा। अमन ने नामे सिर हिला दिया और एनवेलप पर साइन करने के बाद वहां से चला गया। उसने अपनी जॉब छोड़ दी थी ताकि वो आंशी को पूरी तरह टाइम दे सके और उसकी वजह से जो भी हुआ उसके बाद आंशी से नजर मिल सके। लगभग 8 महीने बाद अमन ने आंशी को व्हीलचेयर पर बिठा रखा था और उसे तेजी से घसीटते हुए हॉस्पिटल में दौड़ रहा था। आंशी को लेबर पेन शुरू हो गया था, इसलिए वो बुरी तरह चिल्ला रही थी। आंशी रोते हुए चिल्लाकर बोली, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था मुझे पेन हो रहा है, तुम एडवांस में अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते थे क्या अमन कपूर? तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम किसी बड़ी कंपनी के मालिक हो, तुमसे तो मेरे लिए बेड तक बुक नहीं होता, तुम्हारे पास तो मेरे लिए फुर्सत भी नहीं है, पूरा दिन ऑफिस में काम करते रहते हो, मुझे यहाँ दर्द हो रहा है और तुम कुछ नहीं कर रहे। अमन ने व्हीलचेयर रोकी और फिर आंशी के सामने आकर धीरे से कहा, मैंने तुम्हारे लिए अपनी जॉब छोड़ दी थी, ऑफिस का काम भी ज्यादातर मिस्टर सिंह संभाल रहे हैं, सिर्फ एक मीटिंग अटेंड करने गया था बेबी, फिर भी तुम ऐसे रिएक्ट कर रही हो। ये लेबर पेन है, ये कभी भी शुरू हो सकता है। मैं मीटिंग में नहीं जाता तब भी तुम्हें ये शुरू हो जाता। तो क्यों शुरू हो रहा है? मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, तुम यहाँ बैठकर मुझसे बातें कर रहे हो। मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलो। देखो अमन, अगर मैं मर गई तो मेरे बच्चे का ख्याल रखना, कहीं ऐसा ना हो तुम उसे भी अपनी तरह रोबोट जैसा बना दो। आंशी ऐसी सिचुएशन में भी उल्टी सीधी बातें बोले जा रही थी। अमन फिर से पीछे आया और उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। डिलीवरी रूम में अमन पूरी देर तक आंशी के साथ था और कुछ ही देर में उसने बच्चे डिलीवर कर दिया था। बाहर चेतना जी, तेजों की प्रीतो जी और अर्जुन बेसब्री से अमन के बाहर आने का वेट कर रहे थे। कुछ देर में बच्चों की रोने की आवाज़ आई, डॉक्टर ने उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया और अमन उसके बाद बाहर आ गया। बाहर आते ही उसकी फैमिली ने उसे रोककर पूछना चाहा, लेकिन अमन जल्दबाजी में वहां से निकल गया। अमन हॉस्पिटल से बाहर आ चुका था और इस वक्त अपनी गाड़ी में बैठा था। उसने किसी को कॉल किया और हल्का मुस्कुराकर कहा, इट्स अ बॉय। मेरी बटरफ्लाई ने तो तुम्हारी हालत खराब कर दी होगी, उससे दर्द बर्दाश्त नहीं होता है, सामने से आवाज़ आई। वो विधिक था जिसके चेहरे पर इस वक्त सुकून भरी मुस्कुराहट थी और वो एक अंधेरे कमरे में बैठा था। हाँ, उसे संभालना मुश्किल ही होता है, तब भी मुश्किल था और आज भी मुश्किल है। ये तो तुमने कॉल करके बता दिया कि तुम ठीक हो, वरना वो जिंदगी भर मेरी शक्ल नहीं देखती। अमन ने गहरी सांस भरते हुए जवाब दिया। इसी के साथ वो पुरानी यादों में खो गया था जब वो रिजाइन करके वापस आंशी के पास पहुंचा था। आंशी को होश आ चुका था लेकिन वो किसी से मिलना नहीं चाहती थी। अमन उसके पास गया तो आंशी ने उससे नजरें घुमा ली। अमन आंशी का हाथ पकड़कर धीरे से बोला, क्या इसलिए तुम मेरे पास वापस आई हो आंशी? तुम प्रेग्नेंट हो और मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती। देखो ना, मैं तो सेलिब्रेट भी नहीं कर पा रहा, तुम मेरी शक्ल भी नहीं देख रही हो। मेरा यकीन करो, इन सब में मेरी कोई गलती नहीं थी और मैं कभी झूठ नहीं बोलता।
तुम चाहते तो उसे रोक सकते थे, कुछ तो आइडिया होगा ना तुम्हें, क्यों किया तुम लोगों ने ऐसा? तुमने उसे मार दिया। आंशी ने अमन की तरफ देखकर नम आंखों से पहा। वो बस एक ही बात की रट लगाई हुई थी कि उन्होंने विधिक को मार दिया। अमन आंशी को कुछ कहता उससे पहले आंशी ने सख्त आवाज में कहा, पता है मेरी प्रेगनेंसी का पता चलने के बाद उसे कितना दर्द हुआ था, फिर भी उसने मुझे समझा और तुम्हारे पास लेकर आया। तुम लोग उसे बुरा इंसान बोलते हो लेकिन उससे बुरे तुम हो। उसने मुझे समझ लिया लेकिन तुम लोग उसकी फीलिंग्स को नहीं समझ सके और मार दिया। प्लीज अमन, चले जाओ यहाँ से। मुझे नहीं पता मैं इस गिल्ट की फीलिंग से कब बाहर निकल कर आऊँगी। काश मैं यहाँ कभी आती ही नहीं तो एटलीस्ट आज विधिक जिंदा होता। अमन वहाँ से उठकर जाने को हुआ तभी एक अननोन नंबर से उसके पास वीडियो कॉल आया। अमन कॉल रिसीव किया तो सामने विधिक बैठा था। विधिक को अपने सामने ठीक देखकर अमन को हैरानी हो रही थी। फिर उसने स्क्रीन को आंशी की तरफ किया। आंशी जल्दी से उठकर बैठी और रोते हुए बोली, विधिक तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? तुम कहाँ हो? रिलैक्स बटरफ्लाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने वो सब छोड़ दिया इसका मतलब ये नहीं कि खतरों से अनजान हूँ। तुम्हारा हस्बैंड भले ही मुझे ना नुकसान पहुँचाए लेकिन बाकी लोग और भी थे जो मुझे नुकसान पहुँचा सकते थे, इसलिए मैं पहले ही तैयारी करके आया था। रोना बंद करो और इस पर गुस्सा मत करो क्योंकि वाकई इसकी गलती नहीं थी। शाहिद ने मुझे सब बता दिया था। खुद का ख्याल रखो, इसलिए तुम्हें इसके पास छोड़कर नहीं गया था कि तुम मेरे जाने के बाद इसकी शक्ल भी ना देखो। विधिक ने आंशी को बहुत प्यार से समझाया। आंशी ने रोते हुए उसकी बात पर हामी भरी। अमन पुरानी यादों से बाहर आ गया था। वहीं उसने महसूस किया विधिक का कॉल अप कट हो चुका था। विधिक को बताने के बाद अमन वापस अंदर आया और सबसे मिलने लगा। वहीं दूसरी तरफ कॉल कट होते ही विधिक के चेहरे के भाव सर्द थे। कहते हैं कुछ कहानी अधूरी रहने के लिए ही लिखी जाती है, जैसे कि मेरी और बटरफ्लाई की कहानी। बटरफ्लाई की कहानी पूरी हो चुकी है लेकिन मेरी कहानी अभी भी अधूरी है। पर कोई भी कहानी कभी अधूरी नहीं होती। किताब के कुछ पन्ने ऐसे होते हैं जो बाद में लिखे जाते हैं, विधिक ने खुद से कहा और फिर सीटी बजाते हुए वहां से चला गया। उसके चेहरे पर हल्की स्माइल थी। चलिए जी, कहानी खत्म हो गई। आई होप जिनको विधिक पसंद है उन्हें ये लगा होगा कि विधिक के कैरेक्टर के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ, और जिन्हें अमन और आंशी को साथ देखना था वो भी खुश हो गए। बाकी कुछ लोगों को अभी भी एंड नहीं पसंद आया तो उनका कुछ नहीं हो सकता। कुछ लोग कभी सैटिस्फाई नहीं होते।